मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप सबसे प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से अनुमान का सहारा लेंगे, और मैं कह तो रहा हूं अनुमान का सहारा, लेकिन जो आपका अनुमान होगा वो किस तरह से सटीक हो सकता है, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। दरअसल पिछले कुछ समय से मैं जो इस सीरीज पर आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और डेफिनेटली देखिए, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो उत्साह तो बढ़ता ही है। उत्साह इसलिए नहीं बढ़ता कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि उत्साह बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, कम से कम मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूं, वो ये होता है कि नहीं, मेरी बातों से आपको लाभ पहुंच रहा है। ये मेरे उत्साह का, मेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण होता है। आज के मेरे इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मेरे सीरीज के लेक्चर्स को ध्यान से सुना तो आपके जो स्कोर हैं उनमें काफी कुछ इजाफा हो जाएगा। वो आपको इस लेवल तक तो पहुंचा ही देगा कि इस पेपर में तो कम से कम आप बिल्कुल सिलेक्शन जोन में आ ही जाएंगे। और अगर यदि आप सोच रहे होंगे कि केवल पढ़ने के दम पर, रटने के दम पर आप ऐसा कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सही नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अनुमान के आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आपके दिमाग में डाउट बना रहेगा कि पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन जो अनुमान के आपके आधार होंगे, जो बेस होंगे, यानी कि उत्तर तक पहुंचने के जो आप आधार लेकर के चल रहे हैं, जो टेक्निक अपना रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आइए सीधे सीधे अब बात करते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। मेरे पास क्वेश्चन पेपर का ए सेट है और उसका यह क्वेश्चन नंबर है 32, राइट। पहले प्रश्न को सुन लीजिए, फिर आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फिर वो कह रहे हैं कि विचार कीजिए। विचार कीजिए जब वो कहते हैं तो इसका मतलब ही यह है कि थोड़ा सा आप सोचिए, कंसीडर कीजिए इसको। कथन एक, स्टेटमेंट एक, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। ये कथन एक था। फिर कथन दो, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। मैं यहां भी रिपीट कर रहा हूं, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। कथन एक और कथन दो आपने सुन लिया। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां एक बार देख लेते हैं। ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। और डी, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ये जो कथन कथन है ना, इसको आप रट डालिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर ही हर क्वेश्चन के साथ आएंगे जो इस तरह के फ्रेम वाले क्वेश्चन होंगे, ताकि आप उस समय अटपटा महसूस न करें कि किस तरह से ये फ्रेम किए गए हैं ए बी सी डी। उन्हें आप अपने दिमाग में रचा बसा लीजिए तो आप भ्रमित नहीं होंगे। दोस्तों, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि जैसे ही आपने यह प्रश्न सुना, कथन एक और कथन दो, तो प्लीज आप विचार कीजिए कि आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया था। और वो थॉट आ गया होगा जब आपने कथन एक सुना है, बस उसी समय आ गया होगा। और फिर जब कथन दो सुना तब फिर एक दूसरा थॉट आया होगा। और मजेदार बात यह है कि आपका जो कथन दो के बाद जो विचार आया होगा, वो कथन एक के बाद जो आपका विचार आया था उसी को मजबूत करने वाला होगा। यानी कि दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में इसी तरह का विचार आया होगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो हमारे कोर्स में था ही नहीं। इस तरह के विचार आ सकते हैं। हाँ, जो आईपीएस कर चुके हैं, जो ट्रेनिंग में है, जैसे कि अभी जो आपके फर्स्ट रैंकर हैं वो ऑलरेडी आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि मामला जेल का है तो उन्होंने हो सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान इसे पढ़ा हुआ हो। यहां तक कि जो स्टूडेंट लॉ कर रहे होते हैं, ऑप्शनल में जिन्होंने लॉ लिया हुआ है, वो भी हो सकता है कि उन्हें ये प्रश्न थोड़ा सा मजाक जैसा लगे, यार ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जी हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली एकदम स्ट्रेट है, इसमें कहीं भी तिरछापन नहीं है, स्ट्रेट है। यदि आपने इसे पढ़ा है तो आप सीधे सीधे बना लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तब कैसे बनाएंगे? अब आप क्या करेंगे? अपने थॉट पर विचार कीजिए। जैसे ही हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि अरे इसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मान करके चलिए कि आपका दिमाग सरेंडर करने की मुद्रा में आ गया है, वो आपसे कह रहा है कि भैया ये तुमसे नहीं बनेगा, छोड़कर आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों कितनों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि पता लगा आगे भी जिस प्रश्न से आपकी मुलाकात होनी है वो भी कुछ इसी तरह का होगा, कितनों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे? फिर तो पता लगा कि हम बाहर ही हो जाएंगे। ऐसे समय पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने विचारों को कंट्रोल में लेना चाहिए और ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं देखता हूं कुछ तो होगा, ऐसा क्या हो गया, और इसे आप फिर अंदर से संतुलन ला करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। भले ही आप एग्जैक्ट तरीके से इसके बारे में न याद कर पाए क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सूत्र हैं जिन्हें पकड़ने के बाद आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इसे क्वालिफाई करना है तो, यानी कि आपको कट ऑफ मार्क्स से बेहतर ऊपर स्थिति हासिल करनी है तो, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। चलिए मैं आपको 2-3 सूत्र बताता हूं, अनुमान लगाने के तरीके बताता हूं जो इस प्रश्न से ही रिलेटेड है। पहली बात, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हैं तो भारत के आधुनिकीकरण के अंतर्गत आप अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए थे उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन बनाने शुरू किए, कैसे हमारे यहाँ रेल बिछाना शुरू किया, तार बिछाने शुरू किए, ये सब पढ़ते हैं आप। कैसे IAS की शुरुआत की, कैसे फिर बकायदे हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था शुरुआत की, सारा का सारा सिस्टम उन्हीं के समय का है ना, जुडिशरी पैटर्न वगैरह, क्या वहां से कुछ निकल करके आया आपके दिमाग में? देखिए आपको एक सन दिया हुआ है 1894, जेल का नियंत्रण, जेल अधिनियम 1894, लेकिन यहां आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भैया ये 1894 हो सकता है कि गलत हो तो हम क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी किसी पुराने एक्ट के बारे में ईयर दिया हुआ हो तो आप ज्यादा भ्रमित मत होइए, वो केवल आपको भ्रम में डालने के लिए ही ऐसा किया जाता है। हाँ, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई तो उसमें दे रहा 1882 में हुई, तो अब ये तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको मालूम ही होना चाहिए कि कब हुई। लेकिन अब जेल अधिनियम कब आया था कब नहीं आया था तो वो आपसे ये जानना नहीं चाह रहे कि आपको याद है कि नहीं है, वो केवल ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यह होता है, यहां आपको यह रिस्क तो लेना चाहिए कि जेल अधिनियम जो आया होगा 1894 में ही आया होगा क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी, और आप देखिए कि जो 1894 की भी जो स्थिति है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थिति है, यानी ये ब्रिटिश कंपनी की स्थिति नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। आप जानते हैं कि 1858 में उसने अपने हाथ में ले लिया था सब, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, हमारे यहां वायसराय आ गए थे फिर, तो इसका मतलब है कि ये सन तो ठीक होगा। अब ये अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि ये जो जेल है ये किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, किस सूची का विषय है? चलिए समवर्ती को तो हम छोड़ देते हैं, यहां समवर्ती सूची का कोई रोल नहीं है, या लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? तो आपको पता लगेगा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है, कि राज्य में गृह मंत्री होते हैं और गृह मंत्री ही लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, है ना, तो राज्य का विषय तो ये है। तो जब वो लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है तो जेल तो लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि रोज के मामले में जेल के प्रशासन को केंद्र सरकार थोड़ी देखेगी, वो तो राज्य सरकार ही तो देखेगी भाई, और उसके लिए नियम और कानून बनाएगी, यानी कि ये राज्य सूची का विषय है। और फिर इसके बाद सेकेंड दिया हुआ है कि ये 1894 में व्यवस्था की गई थी और जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। यहां तक कि जब आप बाद में जब हमारे यहां बकायदे वायसराय आ गए और फिर एक्ट बनने शुरू हुए, आप देखते हैं ना इंडिया एक्ट और फलाने एक्ट और प्रांतीय सरकार एक्ट, इस तरह से ढेर सारे एक्ट बनने शुरू हुए, उसमें भी आप पढ़ेंगे जगह जगह जब हमारे यहाँ चुनाव शुरू हो गए थे तो बकायदे वो प्रांतीय सरकारों के ही अधीन थे, तो इसमें आपको कोई उटपटांग सी चीज नहीं लगेगी, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि पहला क्या है कि राज्य सरकारों के अधीन है, तो बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकारों के अधीन है और ये बहुत पहले से रहा है, 1894 से ये जो विषय है ये प्रांतों का ही विषय रहा है, तो इसका मतलब है कि वास्तव में ये दोनों कथन सही हैं। और जो दूसरा कथन है वो पहले की व्याख्या कर रहा है, कैसे व्याख्या कर रहा है कि जेल का जो मामला है वो राज्य सरकारों का विषय है, दैनंदिनी मामलों में, और राज्य सरकारों का विषय क्यों है, क्योंकि 1894 के एक्ट में यह जो क्षेत्र है यह प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया था। व्याख्या कर रहा है, अगर नहीं दिया जाता तो उनके अधीन नहीं होता। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे जैसा कि मैंने अभी आप बताया है, तो अब आप खुद एनालिसिस कीजिए अपनी, अब आपको यह प्रश्न कैसा लगा, अब आप खुद विचार कीजिए। और प्लीज मुझे खुशी होगी यदि आप अपने कमेंट्स भी देंगे तो, क्योंकि उससे मुझे पता लग सकेगा कि मेरा जो तरीका है वो कितना आपके लिए फायदेमंद है, और फिर मैं अपने आप को आपके अनुकूल ज्यादा से ज्यादा ढालने के लायक बना सकूंगा। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नील मोड़ी कलीता गुवाहाटी असम से, दिनेश कुमार गुर्जर जयपुर से, कर्मवीर कुमार पश्चिम चंपारण से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, दुर्गेश राव, वंदना वर्मा, अन्नू कुमारी बेगूसराय बिहार से, और प्रमोद कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।